ओम शांति। एक दिन सुबह सुबह एक सम्राट के दरबार में एक व्यक्ति आकर पहुंचा और उस व्यक्ति ने कहा कि सम्राट, आपके पास सब कुछ है, आपने सब कुछ जीत लिया है, परंतु फिर भी इस संसार में एक ऐसी वस्तु है जो आपके पास नहीं है। सम्राट ने कहा, क्या ऐसी कौन सी वस्तु है, क्या ऐसी भी कोई वस्तु है जो मेरे पास नहीं है, जो मैंने नहीं जीती है? बताओ, मैं आतुर हुए जा रहा हूं, तुरंत बताओ ऐसी वो कौन सी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, सम्राट, आपके पास सब कुछ है, परंतु देवताओं के वस्त्र नहीं है। सम्राट ने कहा, देवताओं के वस्त्र? ये तो ना कभी सुने और ना कभी देखे। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ राजन, देवताओं के वस्त्र, और वो वस्त्र मैं आपको दे सकता हूं। तो राजा ने कहा, हाँ तुरंत दो। उस व्यक्ति ने कहा, देवता इस स्वर्ग में रहते हैं, वहां तक की यात्रा बहुत दूर है और उसकी कीमत बहुत अधिक है, करोड़ों रुपए लग जाएंगे। सम्राट ने कहा, करोड़ों रुपए? वो कैसे? उसने कहा, बहुत सारे राजनीतिक जब मरते हैं तो स्वर्गीय तो होता है, हो जाते हैं, तो वहां पर भी आजकल बहुत रिश्वत का जमाना वहां पर भी पहुंच गया है, तो करोड़ों रुपए लगेंगे। तो राजा ने कहा, अगर धोखा दिया तो? उस व्यक्ति ने कहा, आप मुझे यहीं रख लो, अपने ही महल में। राजा ने कहा, कितने दिन लगेंगे? क्या 2-3 दिन में यह काम हो जाएगा? उसने कहा, 2-3 दिन में तो दिल्ली में फाइल भी नहीं सरकती है, 6 मास लगेंगे। राजा ने कहा, 6 मास? व्यक्ति ने कहा, रास्ता बहुत लंबा है, आंतरिक यात्रा है, देवताओं तक पहुंचना है, दिल्ली में पहुंचते पहुंचते कितना खर्च हो जाता है, तो स्वर्ग में पहुंचने को कितना समय लगेगा? परंतु राजा ने कहा, खबरदार, यदि धोखा दिया तो। उस व्यक्ति ने कहा, धोखा मैं दू कैसे, आपके ही महल में रहूंगा, परंतु हां, जितना पैसा चाहिए वो पहुंच जाना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, महल बनाया गया और वो हर 15-20 दिन में लाखों और करोड़ों रुपए लेने आ जाता था, परंतु नंगी तलवारें लटकती थी, भागने का कोई मार्ग नहीं था, देवताओं के वस्त्र। 6 मास पूरे हुए, आतुरता बढ़ी, क्या हुआ? क्योंकि व्यक्ति अभी है, भागा नहीं है। और एक दिन 6 मास के बाद अचानक वो व्यक्ति एक बहुत बड़ी सूटकेस, एक पेटी लेकर बाहर आता है, द्वारपाल से कहता है, जाओ सम्राट को बताओ कि वस्त्र तैयार है। सारा शहर, सारे विद्वान महल के द्वार पर एकत्र होते हैं, क्योंकि वह घटना होने वाली है जो आज तक न कभी सुनी न कभी देखी, देवताओं के वस्त्र और जिनकी कीमत करोड़ों है। वो व्यक्ति अपनी पेटी लेकर आता है, सभा भरी हुई है, और सम्राट से कहता है कि सम्राट वस्त्र तैयार है, आप आइए और पहनिए। वो पेटी खोलता है और सम्राट से कहता है पहले अपना ताज निकालिए ताकि मैं आपको दूसरा ताज दे सकूं। और वो उस पेटी से एक ताज निकालता है, परंतु ताज है ही नहीं, ताज अदृश्य है। और निकालते निकालते कहता है, उस ताज को निकालते निकालते जो है ही नहीं, कि ये ताज देवताओं ने जाते समय कहा था केवल उनको ही दिखेगा जो गद्दार नहीं है, ये ताज केवल उनको ही दिखेगा जो दिल के सच्चे हैं, ये ताज केवल उनको ही दिखेगा जो अपने ही पिता के बेटे हैं। राजा भी चौंका, ताज तो था ही नहीं, परंतु क्या करे, कहा था जो खोटे हैं और जो गद्दार है उन्हीं को यह दिखेगा नहीं, बाकी सबको दिखेगा। तो उसने कहा, ताज तो बहुत सुंदर है, लाओ पहनाओ। सारी सभा स्तब्ध थी। सभा ने सोचा, एक दूसरे की तरफ देखा, कहीं ये ना हो कि मैं कुछ ना कहूं और लोग समझे कि मैं ही गद्दार हूं। सब ने कहा कि कितना बढ़िया ताज है, ताज तो बहुत सुंदर है। उस व्यक्ति ने कहा, राजा अब कोट पहनिए। राजा ने कहा, कोट? उसके लिए ये वस्त्र निकालने पड़ेंगे। और उसने कोट निकाला पेटी से, जो कि था ही नहीं, और राजा से कहा कि ये कोट पहनिए। राजा क्या ना करता, उसने कोट पहना। फिर राजा से कहा, ये धोती पहनिए। सभा कहने लगी, ऐसा बढ़िया कोट हमने आज तक नहीं देखा। और हरेक की आवाज एक दो से ज्यादा थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो मैं हूं। राजा भी क्या करता, राजा को लगा कि शायद मैं ही एक गद्दार हूं इस सभा में, और ये सारी सभा को दिख रहा है और मुझे ही नहीं दिख रहा है, परंतु बोलो कैसे। अब व्यक्ति ने कहा, देवताओं ने और एक बात कही थी कि वस्त्र जो भी व्यक्ति पहनेगा उसको स्वर्णिम रथ पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाए। राजा ने सोचा, ये तो अपने लोग हैं, बाहर वालों के पास और इस हालत में, परंतु जय घोष हो रहा है कि वस्त्र कितने सुंदर, ऐसे अद्वितीय वस्त्र हमने आज तक नहीं देखे, ऐसा मुकुट तो आज तक किसी के पास नहीं था, जबकि राजा निर्वस्त्र खड़ा है। क्या करे, राजा बैठा रथ के ऊपर, जन समुदाय आगे और पीछे, और उस व्यक्ति ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, जहां जहां रथ जाएगा पहले से ही घोषणा कर दी जाएगी किसको ये वस्त्र दिखेंगे उसकी डुगडुगी बजाई जाएगी। राजा रथ पर बैठा और रथ चला, चारों ओर से लोग कहने लगे, वाह वाह वाह, कितना सुंदर वस्त्र है, कितना सुंदर कोट, कितनी सुंदर धोती, और कितने सुंदर, कितना सुंदर ये मुकुट। राजा और ही पैर परेशान और हैरान, किसको बताए अपनी दिल की व्यथा। और लोग भी और जोर जोर से कहने लगे, माओ ने अपने बच्चों को घर में छुपा दिया, बच्चों का क्या भरोसा। कहां क्या बोल दे। फिर भी एक बच्चा, जो नहीं बोलना चाहिए था वही बोल दिया। पहले तो कान में कहा अपने पिता के कि पापा राजा तो निर्वस्त्र घूम रहा है। पापा ने समझाया, बेटा ये गहरे अनुभवों की बातें हैं। जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें भी दिखेगा। अभी तुम छोटे हो, चुप रहो, बोलना नहीं। परंतु बच्चे तो बच्चे हैं। किसी एक बच्चे ने जोर से चिल्ला दिया और जो नहीं कहना था वही कह दिया। भीड़ की परंपरा और भीड़ की याददाश्त और भीड़ का भय और भीड़ की लोकलाज और भीड़ का वह अज्ञात भय, यही मनुष्य को चलाता है। उसे इसकी कम परवाह है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे, दूसरे क्या देख रहे हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, भीड़ की मानसिकता, इस समाज की मानसिकता, इस समाज की लोकलाज। कैसे तोड़े इसको, कैसे परे जाए इससे, क्या यह संभव है, क्या ऐसा आंतरिक विद्रोह हो सकता है। क्योंकि सत्य भीड़ में अवतरित नहीं हो सकता, सत्य वहां अवतरित होता है जहां चेतना होश में है। सत्य वहां अवतरित होता है जहां चेतना की तरंग जाग चुकी है। भीड़ में सत्य कहां, भीड़ में भय है, भीड़ में वही पुरानी परंपराएं हैं, सड़ी गली बातें हैं, पुरानी याददाश्त है, वही पिटाए पिटे पिटाए मार्ग है। और जिसे सत्य तक पहुंचना है उसे इस संसार से परे जाना पड़ेगा, और जिसे सत्य का साक्षात्कार करना है उसे भीड़ क्या सोच रही है और भीड़ क्या कह रही है और समाज क्या कह रहा है और समाज की क्या परंपराएं हैं, इस परिपाटी से ऊपर उठना होगा। एक तरफ समाज है और उसकी परंपराएं, और जिसके बोझ के नीचे हम दबे हैं सदियों से, और दूसरी तरफ भगवान है और दूसरी तरफ श्रीमत है और दूसरी तरफ उसकी परंपराएं है और दूसरी तरफ उसके दिए हुए वचन है और दूसरी तरफ उसके महावाक्य है और दूसरी तरफ उसका वो विद्रोह है। साहस की आवश्यकता है, बल की आवश्यकता है। बाबा ने आदि रत्नों को भी याद किया है, सहन किया, खेल खेल में सहन किया। हीरो एक्टर आदि रतन, रियल गोल्ड, राइट हैंड, विशेषता संपन्न विशेषात्मा, अमर स्थापना के कार्य की भुजाए, रियल गोल्ड, कई नाम गिनाए किसके लिए, जिन्होंने साहस किया था, जिन्होंने सहन किया था। महात्मा बुद्ध के समय में उनका एक अनन्य शिष्य था कभी, और बिहार में कोई एक गांव था सुखा नाम का, वहां पर सभी विरोधी थे। बुद्ध ने उनसे कहा कि तुम क्या करोगे? उसने कहा कि मैं उसी गांव में जाकर आपका संदेश दूंगा। बुद्ध ने कहा कि वहां न जाना, वहां पर लोग बहुत दुष्ट है और विरोधी है। उसने कहा कि मैं तो वहीं जाऊंगा। तो बुद्ध ने कहा मेरे तीन प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि यदि तुम वहां गए और वहां के गांव के लोगों ने तुम्हें गाली दी, अपशब्द कहे, व्यंग बाण छोड़े, तो तुम क्या करोगे? उस शिष्य ने कहा कि मैं तो और ही खुश होऊंगा कि मैं आपका संदेश दे रहा हूं। और इन लोगों ने केवल गाली दी, मारा तो नहीं। बुद्ध कहते हैं दूसरा प्रश्न है, यदि उन लोगों ने तुम्हें शारीरिक रीति से मारा तो क्या करोगे फिर? वो कहता है मैं और ही ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि उन्होंने केवल मारा, मार ही तो नहीं डाला। तीसरा प्रश्न, तब तुम क्या करोगे यदि वो लोग तुम्हें मार ही डाले? वो कहता है मरते मरते भी आपका संदेश दूंगा और सोचूंगा, वैसे भी तो जीवन व्यर्थ ही तो है। क्यों ना इस जीवन को आपके चरणों में अर्पण करके देह का त्याग करूं। मुरली में याद प्यार है, बाप के स्नेह के स्नेह में हद की प्राप्तियों को कुर्बान करने वाले, बाप के स्नेह में हद की प्राप्तियों को कुर्बान करने वाले। तो ऐसे वो आदि रत्नों को भी बाबा ने याद किया। तो आज हम चर्चा करेंगे उस कुल की और इस कुल की। तो कौन किसको देख रहा है आज की मुरली में? बाप दादा किसको देख रहे हैं? सर्वस्नेही, टोटल लव जिनका है। और किसको देख रहे हैं? मिलन की भावना की इच्छा रखने वाले, मिलन की भावना रखने वाले बच्चों से मिल रहे हैं, जिन्होंने जन्म जन्म बाप को पुकारा है प्राणों के अंतस्थ से पुकारा है, दिन रात पुकारा है, अनन्य भक्ति की है, बलिदान दिए है, ढूंढा है, खोजा है, ऐसी आत्माओं से मिलने वो आया है। परंतु केवल भक्ति से यह मिलन नहीं हो सकता, बाबा ने कहा यह सम्मुख का मिलन है। इस मिलन के तीन आधार बताए हैं। कौन से? सभी ने मुरली सुनी है। कौन से आधार है तीन? इस मिलन जो हुआ है वो तीन कारणों से हुआ है। कौन से? कौन से? कौन से कारण है? एक ज्ञान का आधार, दूसरा संबंध का आधार, और तीसरा आज की मुरली बताओ, हफ्ते भर के नहीं, और तीसरा अधिकार का आधार। बाप और बच्चे का संबंध जुटा किस आधार से? ज्ञान के। ऐसे ज्ञानवान बच्चों को, ऐसे ज्ञानवान बच्चों की भावना थी, उस आधार से यह संबंध जुटा, तो पहला आधार हुआ ज्ञान, परिचय प्राप्त हुआ, स्वयं का परिचय और उसका परिचय, तब कहीं यह मिलन हुआ। दूसरा आधार संबंध, पिछले संडे बाबा ने कहा था महान आत्माएं भी नहीं जान पाई उसे, तुमने जाना है, किसने? भोलेनाथ के भोले बच्चों ने, दिव्य बुद्धि। तीसरा आधार अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार, स्वर्ग का वर्ष लेने के अधिकार का क्या है स्टैंप प्राप्त हुआ है सभी को। इन तीन आधार से क्या हो गए तुम, मिलन को प्राप्त हुए, भगवान से मिलन मनाया। इस युग की सबसे बड़ी, इस सदी की सबसे बड़ी घटना है ये। वह परमात्मा जो कि 5000 साल तक एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, वह रहस्य का रहस्य उद्घाटन अब हुआ है। चाहे कोई महावीर न भी हो, शक्ति संपन्न न भी हो, विजयी न भी हो, स्वयं को कमजोर समझता हो, फिर भी सब में एक विशेषता है, कौन सी? तो ब्राह्मणों की 7 विशेषताएं गिनाई है बाबा ने, कौन कौन सी? सबसे पहली ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना इसे क्या नहीं समझना, साधारण बात नहीं समझना, इस युग की सबसे असाधारण बात है ये, यही विशेषता है। चाहे शक्ति संपन्न ना हो, महावीर ना हो, विजयी ना हो, स्वयं को कमजोर समझता है, फिर भी हर एक ब्राह्मण आत्मा विजयी विशेष आत्माओं की लिस्ट में है, क्योंकि क्या बन गए, ब्रह्मा कुमार बन गए और ब्रह्मा कुमारी बन गए, पहली विशेषता। दूसरी, सबने मुरली सुनी है और पढ़ी भी है और सब भट्टी में है, भट्टी में किस लिए आए हैं? किसी अन्य क्लास में हमने भट्टी के 21 घटक सुनाए थे, भट्टी की शक्तिशाली, भट्टी के लिए 21 शक्तिशाली बातें चाहिए, केवल गिनाएंगे विस्तार नहीं कराएंगे। सबसे पहला शक्तिशाली दिनचर्या, शक्तिशाली दिनचर्या। दूसरा शक्तिशाली लक्ष्य, शक्तिशाली लक्ष्य, शक्तिशाली दिनचर्या, शक्तिशाली संकल्प, शक्तिशाली चिंतन, शक्तिशाली स्वमान, शक्तिशाली वृत्ति, शक्तिशाली वातावरण, शक्तिशाली निसर्ग का सानिध्य, शक्तिशाली ड्रिल, शक्तिशाली कमेंट्री, शक्तिशाली क्लास और क्लास कराने वाला भी शक्तिशाली। और आप सबको यहां पर जब से आए हो तब से शक्तिशाली क्लास कराने वाले भी मिल रहे हैं, तो शक्तिशाली क्लास भी मिल रही है। शक्तिशाली दृष्टि, शक्तिशाली मौन, बिना मौन के कोई भी भट्टी संभव नहीं है। शक्तिशाली आत्मचिंतन, शक्तिशाली आत्मनिरीक्षण, शक्तिशाली आत्ममूल्यांकन, सेल्फ एनालिसिस, शक्तिशाली और हल्का भोजन, शक्तिशाली और गहरी साउंड रात्रि की निद्रा, सभी बातें शक्तिशाली चाहिए। कितनी हुई? शक्तिशाली ज्ञान की चर्चा आपस में, जब बोले तो केवल ज्ञान की चर्चा हो और कुछ नहीं। और लास्ट शक्तिशाली योगाभ्यास, जैसा अमृत वेला शक्तिशाली वैसा ही नुमाश शाम का योग भी शक्तिशाली, शक्तिशाली म्यूजिक भी, शक्तिशाली परमात्मा प्रेम के गीत भी, पर शक्तिशाली परमात्मा प्रेम भी, वो सॉफ्ट म्यूजिक भी शक्तिशाली, सब कुछ शक्तिशाली। जब होगा तब एक शक्तिशाली भट्टी का निर्माण होगा और उस शक्तिशाली भट्टी से परिवर्तन होगा। तो हम पहली पॉइंट पर थे, ब्राह्मणों की विशेषता, सबसे पहली ब्रह्मा कुमार बन गए, दूसरा बाप मिला बाप अच्छा लगा, बाप मिला और बाप अच्छा लगा, तीसरा परिवार मिला और परिवार का संगठन मिला, चौथा श्रेष्ठ जीवन मिला, पांचवा निस्वार्थ स्नेह ने मन को आकर्षित किया। इस संसार में सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति, स्वार्थ का प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम केवल यहां है, वो मिला यहां, उस प्रेम ने आकर्षित किया। छठवा श्रेष्ठ जीवन का सहज सहारा मिला, और अंतिम डेस्टिनेशन ऑफ प्यूरिटी, पवित्र ठिकाना। ये सात चीजें बाबा ने गिनाई है, ब्रह्मा कुमार बन जाना, बाप मिल जाना, तीसरा परिवार मिल जाना, संगठन मिल जाना, चौथा श्रेष्ठ जीवन मिल जाना। याद करो उस जीवन को जो पहले जीते थे, क्या टाइम टेबल था उस जीवन का, कैसी दिनचर्या थी वो, क्या खाते थे और क्या पीते थे, और कौन सी मर्यादाओं का पालन करते थे, और कौन सी लोकलाज थी वहां पर, क्या था वो जीवन और क्या है ये जीवन। पवित्र ठिकाना, ऐसा ठिकाना और कहीं नहीं। ब्राह्मण कुल में आ गए, ब्राह्मण परिवार में आ गए, ब्राह्मण समाज में आ गए, ब्राह्मण दुनिया में आ गए, ब्राह्मण कुटुंब में आ गए, ब्राह्मण फैमिली में आ गए, ब्राह्मण कम्युनिटी में आ गए, ब्राह्मण गैदरिंग में आ गए, ब्राह्मण कम्यून में आ गए। ऐसी कम्युनिटी कहां है, है कहीं? तो इस कुल की विशेषता बताओ अब, कौन से कुल की? ब्राह्मण कुल की, मुरली के बाहर की पॉइंट। चालू करो माताओं की तरफ से, जिस कुल में आए हो उस कुल की विशेषता क्या है, इस कुटुंब की विशेषता क्या है, इस बिरादरी की विशेषता क्या है, इस वंश की विशेषता क्या है? पवित्रता। एक यहां पर सभी आत्माओं ने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, पवित्रता की सौगंध ली है, सभी धर्म और कर्म पर चलने वाली है, सभी परमात्मा प्रेम में डूबी हुई आत्माएं हैं इस कुल की। और इस कुल की विशेषता फटाफट बताते जाओ, सभी स्नेही है, सभी सहयोगी है, सभी निस्वार्थ प्रेम वाली है, सभी सच्ची दिल वाली है, सभी सेवाधारी है, सभी क्या करने वाली, सहयोग देने वाली, वो हो गया, सभी संस्कारों की रास मिलाने वाली, सभी इस कुल की आत्माएं कैसी है, सभी और सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाली, और उच्च विचार वाली, और संपूर्ण समर्पण कुर्बानी वाली, बलिदान वाली, उत्सर्ग वाली, ऊंचे ऊंचे शब्द है सारे, एक से बढ़कर एक, समर्पण एक शब्द है, समर्पण से भी ऊंचा शब्द है कुर्बानी, उससे भी ऊंचा है बलिदान, उससे भी ऊंचा है उत्सर्ग, हिंदी भाषा का सबसे ऊंचा शब्द उत्सर्ग। महादानी, सभी तपस्वी है, सभी योगी है, सभी महान है, सबने भगवान को जाना है, सब परमात्मा की है, एक के प्रति समर्पण भाव, एक से सर्व प्राप्ति, एक की सबका एक, एक के सर्व प्रेम, एक से लगन, एक बाप दूसरा न कोई, एक के प्रति समर्पण भाव, एक से सर्व संबंध। सभी आज्ञाकारी और सभी वफादार, ऐसा ये कुल है। इस कुल को बाबा ने कहा सबसे ऊंचा कुल है, तो इस ऊंचे कुल के धर्म और कर्म भी ऊंचे होंगे। अगर इतना ऊंचा कुल है और इसमें सभी आ गए हैं, तो इस कुल की लोक लाज, इस कुल की लाज रखना हमारा क्या है? फर्ज है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि इस कुल की, उस कुल की लाज के लिए ज्यादा ध्यान देते हो, समय देते हो, एनर्जी देते हो और इधर कम देते हो, तो स्वयं का नुकसान करते हो और इस ब्राह्मण कुल के भाती हो, तो इस कुल का नाम भी बदनाम करते हो। तो एक तरफ है वह कुल और एक तरफ है यह कुल। किसकी लाज रखेंगे? इस कुल की और थोड़ी थोड़ी उस कुल की भी। एक सन्यासी एक गांव में आया और एक पनघट पर गया, थक गया था, थका मांदा वो सन्यासी सो गया नीचे। उस पनघट पर, उस कुएं पर स्त्रियां आने लगी, वो पनिहारी आने लगी पानी भरने के लिए। एक स्त्री ने देखा उस सन्यासी को और कहा कि सारा संसार छोड़ दिया, परंतु तकिया पत्थर को उसने एक तकिया बना रखी थी। उस स्त्री ने कहा परंतु पत्थर से मोह नहीं गया। सन्यासी सोया था, उसने बात सुन ली और उसने तुरंत पत्थर निकाला और फेंक दिया। दूसरी पनिहारिन ने कहा संसार छोड़ दिया, भगवे वस्त्र धारण कर लिए, परंतु अकड़ नहीं गई। बोट के बैठ गया। तीसरी स्त्री ने कहा हम पनिहारिन तो आएगी और जाएगी, तुम क्यों अपना रास्ता छोड़ते हो? परंतु चौथी एक आई पनिहारिन, एक स्त्री पानी भरने के लिए उस पनघट पर, उसने कुछ अद्भुत बात कह दी। उसने उस सन्यासी से कहा हम तो पनिहारिन आएगी और जाएगी, पानी भरेगी, हम तुमको कुछ ना कुछ तो कहेगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे तुम हरिनाम लेते रहो, तुम क्यों छोड़ते हो अपने धारणाओं को? अज्ञानियों को खुश कर सकता है कोई? बाबा ने प्रश्न पूछा है आज। सारा जीवन लगा दो, खुश होंगे क्या? मुश्किल है, कभी खुश नहीं हो सकते। धर्म और कर्म, धर्म अर्थात धारणाएं, कर्म अर्थात याद। उस कुल की लाज निभाने के लिए पद्मपति होने से वंचित हो जाते हो, उस कुल की लाज निभाने के लिए हीरे जैसे जीवन से कौड़ी जैसा व्यर्थ जीवन बना देते हो, उस कुल की लाज निभाने के लिए क्या करते हो? और एक चीज करते हो, जन जन्म का भाग्य प्राप्ति को गवा देते हो। तो अभी हम देखेंगे धारणा, धर्म अर्थात धारणा। तो इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं कौन सी है? बाबा ने कहा दृष्टि वृत्ति और शुद्ध अन्न की परहेज का जो धर्म है वो भी छोड़ देते हैं। तो हम टोटल 21 धारणाएं के ऊपर चर्चा करेंगे जो सभी को धारण करनी है, और यही धर्म है। इस धर्म से गए अर्थात 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 ब्राह्मण दुनिया से गए। ये धारणाएं पवित्रता की है, ये धारणाएं बाप समान बनने की है, ये धारणाएं फॉलो फादर करने की है। सबसे पहली धारणा है संकल्प की धारणाएं, सबसे पहली धारणा है संकल्प की धारणाएं। जितनी पॉइंट्स आज गिना रहे हैं, आज के बाद हर दिन रात्रि को सोने से पहले ये सारी की सारी पॉइंट्स याद करनी है, आज लिखनी है, कल सारे दिन भर बार बार पढ़नी है ताकि याद हो जाए। सबको पता है नया कुछ भी नहीं है, परंतु एकत्र किया है एक जगह, और हर रात सोने से पहले या तो इसी का चार्ट बनाया जाए, या याद करा जाए मन ही मन, या बाबा के सामने बैठकर एक बार ये सारी मन में स्मरण की जाए और चेकिंग की जाए। शक्तिशाली भट्टी का एक घटक हमने बताया सेल्फ एनालिसिस, 21 बातें जो बताई, कुछ कुछ बातें मिली हुई थी। तो सबसे पहली धारणाएं है संकल्प की धारणा, धर्म अर्थात धारणाएं। संकल्प श्रेष्ठ, संकल्प महान, संकल्प में पवित्रता, संकल्प में व्यर्थ ना हो, संकल्प में विकार की बदबू ना हो। एक एक संकल्प ऐसा हो जैसे कि उसे हम भोग लगा सके, इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, इतनी उसमें प्रांजलता हो। क्या हम सोच रहे हैं? अच्छा आया तो अच्छा, बुरा आया तो बुरा, घृणा वाला आया तो मन में भी घृणा, कर्म का बंधन है। तो सबसे पहले रात्रि चेकिंग करनी है संकल्प की, संकल्प कैसे रहे। यदि संकल्प में खराबी है तो उसकी मरम्मत करनी है, रिपेयर करना है। यदि संकल्प में रुग्णता है, संकल्प यदि बीमार है, ज्ञान के इंजेक्शन देना है कि एक संकल्प को आईवी, पहला संकल्प। दूसरा बोल, क्या बोल रहे हैं, बदले की सूक्ष्म भावना तो नहीं, व्यंगवान तो नहीं, विकारों की वायु तो नहीं, आहत तो नहीं हो रहा है कोई। किसी ने कहा है सोच विचार करना बोलो, एक है विचार कर बोलना, एक है अविचार से बोलना, और एक दूसरी भी अवस्था है जो योगी की अवस्था है, वो है निर्विचार से बोलना। एक है सोच समझ कर बोलना, परंतु सोच समझ कर बोलने वाला व्यक्ति हमेशा गलत बोल देता है, क्योंकि हर बार सोच समझने का टाइम नहीं है। कितनी बार सोचेगा, बोलने के बाद प्राय सोचता है कि यह नहीं बोलना चाहिए था, यह गलत हो गया। सोच समझ कर एक बार बोलना है, दूसरा यह है अविचार से बोलना, एक है अविचार से, एक है सोच समझ के, एक है निर्विचार से। वो साक्षी की अवस्था है, वो योगी की अवस्था है, वो निराकार अवस्था है, क्योंकि उस अवस्था में जो भी बोला जाएगा वो सत्य ही होगा और वो एक्यूरेट ही होगा। कब तक सोचेंगे वो आत्मा मिली तो ये बोलूंगा, उस मीटिंग में ये बोलूंगा, जब जब सोच के जाते हैं कुछ और ही हो जाता है, उल्टा ही होता है। हम जब बचपन में हमें इंग्लिश में एक स्टोरी थी जिसमें एक बच्ची होती है बहुत ही शरारती होती है, हमें पूरी स्टोरी याद नहीं, हमने इस स्टोरी को ढूंढने की कोशिश की आज तक मिली नहीं। बचपन में कभी सुनी थी स्टोरी बुक में, छोटी सी एक लड़की होती है इतनी शरारती होती है, जब भी मेहमान आते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। तो इस बार भी मेहमान आने वाले होते हैं तो माँ उसको समझाती है कि जब वो आएंगे तो कहना मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, जाना जरूरी है क्या, तुम रुक नहीं सकते। बहुत उसको समझाती है, बहुत उसको समझाती है। वो कहती है मैं इसको बस ऐसा ही बोलूंगी, आप निश्चिंत रहो। पहले तो माँ कहती है तुम कहीं चले जाओ, वो कहती है नहीं मैं बोलूंगी। और जब मेहमान आते हैं जितना कुछ वो बोलती है सब गलत गलत ही बोलती है, उनके विरुद्ध ही बोलती है, और लास्ट में कहती है मस्ट यू स्टे, कांट यू गो, रुकना जरूरी है क्या, जा नहीं सकते। तो ट्रेनिंग तो हुई थी पूरी बोलने की, परंतु वो सोच विचार का बोलना सोच विचार का नहीं था। इसके लिए जब आत्मा साक्षी भाव में और अविचार में है, वहां से जो कुछ निकलेगा उस स्थिति से वो श्रेष्ठ ही होगा। दूसरा बोल, तीसरा कर्म। कर्म की पांच बातें हैं, पांचवी बात आज की मुरली में सुनाई है, चार हम खाली गिनाते हैं, पार्टियों से मुलाकात में है चौथी बात, पांचवी बात। हर वो कर्म जो बाप की याद में है वो श्रेष्ठ है, हर वो कर्म जो आत्माभिमानी स्थिति में है वो श्रेष्ठ है, हर वो कर्म जो श्रीमत अनुसार है वो श्रेष्ठ है, हर वो कर्म जो निमित्त भाव से किया गया है वो श्रेष्ठ है। ये चार, और पांचवी आज की मुरली में है। कर्म करो परंतु कैसे, कर्म योगी अर्थात एक रस, कर्म योगी अर्थात निर्वंदन, कर्म योगी अर्थात अप्रभावित, कर्म योगी अर्थात विकर्माजीत, कर्म योगी अर्थात ज्ञानी, कर्म योगी अर्थात ज्ञानी अर्थात समझदार, अर्थात यह समझ कि कर्म करना परंतु बंधन नहीं। जैसे बाप कर्म और फल के बंधन में नहीं है, कर्म और फल से न्यारा है, वैसे जैसे ये ब्रह्मा भी। कर्म ऐसे करो कि हमें कुछ हमने किया नहीं, इतना उससे न्यारापन, कर्म योगी अर्थात न्यारा। ऐसा नहीं कि अच्छे कर्म वाला आ जाए तो खुश और बुरे कर्म वाला आ जाए तो बुरे कर्म वाला आ जाए तो ईर्ष्या, गुस्सा और घृणा। घृणा से वाले से घृणा करना ये भी कर्म का बंधन है। संसार में लोगों ने बदला लिया है जब जब उन पर अत्याचार हुआ है, परंतु उनकी गति क्या हुई वो हम जानते हैं। पान सिंह तोमर और फूलन देवी अत्याचार हुए परंतु बदला लेने का मार्ग चुना, परंतु प्राप्ति क्या हुई। किसी एक अव्यक्त बाबा मुरली में बाबा ने कहा है बहुत सूक्ष्म बात, जब ब्राह्मणों में सूक्ष्म बदले का भी भाव विलीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो शायद ब्राह्मण सभी संपूर्ण बन जाएंगे। अर्थात भगवान जब कह रहा है तो सूक्ष्म बदले का भाव है, किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हमसे कुछ कहा, हम भी वैसा ही उसी तरह से सूक्ष्म रीति से उसे किसी और ढंग से आहत करना चाहते हैं। यदि वो अमृत वेला जल्दी उठता है हमसे तो हम अवसर में है कि कब उससे कुछ कह दे, इतना करते हो फिर भी ये। उसके योगीपने को ठेस पहुंचाने की योजनाएं बनाते हैं सूक्ष्म में। हम वैसा बदला नहीं लेते जैसे संसार के लोग लेते सूक्ष्म में। बाबा ने शब्द प्रयोग किया रहम दिल, रहम की निगाह, शुभ भावना से परिवर्तन, रहम की निगाह। तो कर्म करे परंतु कर्म का बंधन ना हो। किसी मुरली में बाबा ने कर्मातीत की परिभाषा दी है, कर्मातीत अर्थात कर्म भी टच ना करे और कर्म का रिजल्ट भी टच ना करे। और ये भी कर्म कहां से आएंगे, वह निर्विचार की अवस्था से, वह साक्षी के अभ्यास से, वह साक्षी के भाव से। परंतु कितना अभ्यास चाहिए और कितनी तपस्या चाहिए इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कि कुछ भी हमें प्रभावित ना करे संसार का। तीसरा कर्म, चौथा संबंध संपर्क। संबंध संपर्क में एक तो मिठास और दूसरा उस मिठास का भी आधार है डिटैचमेंट, जहां पर बहुत ज्यादा घनत्व है, फैमिलियरिटी है, वहां पे फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घृणा जन्म लेती है। दो व्यक्ति बहुत ज्यादा समीप आ जाए तो इसके लिए दो व्यक्तियों में क्या चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए। चौथा पांचवा चलन, चलन कैसी हो, श्रेष्ठ महान, अंदर एक बाहर दूसरा ऐसे ही ना हो। तीन महावाक्य गिनाए हैं बाबा ने होशियार आत्माओं के, कौन कौन से, जो आत्माएं होशियार बनती है बाप से भी होशियारी करती है, उनके तीन महावाक्य है कौन कौन से, करना पड़ता है, दूसरा दूसरों को खुश, मेरी इच्छा नहीं है दूसरों को खुश करने के लिए किया, और तीसरा किसको पता चलता है, किसको पता चलता है। ये तीन महावाक्य गिनाए हैं किन आत्माओं के, जो ज्यादा होशियार है परंतु शायद भूल रही है कि अभी जो चला रहे वो तो चिल्लाना पड़ेगा, बाप के पास लाख गुना हिसाब का खाता जमा है, इस खाते को चला नहीं सकोगे। चलन कैसी हो, अंदर एक बाहर दूसरा ऐसी ना हो। लियो टॉल्स्टॉय रूस का बहुत प्रसिद्ध लेखक, उसने अपने संस्मरण में एक जगह लिखा है कि एक सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया और चर्च में गया, सूरज अभी उगने का था, मास्को का वो शहर, और चर्च में गया और चर्च में जाता हूं तो एक पहचानी सी आवाज आ रही थी अंदर से, एक व्यक्ति कह रहा था भगवान से, हे प्रभु चर्च में मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, हे प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर दो, मेरे जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं है। लियो टॉल्स्टॉय ने जब यह देखा कि कोई तो अंदर से आवाज आ रहा है, वो वहीं रुक गया, उसे लगा कि उसकी प्रार्थना मैं डिस्टर्ब ना करूं, और वो सोचने लगा कितना ये श्रेष्ठ व्यक्ति है कि अपने सारे पापों को कबूल कर रहा है भगवान के सामने वो भी। फिर उसने थोड़ा ध्यान से सुना, आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, बाद में पता चला अरे ये तो उसी की आवाज है जो हमारे शहर का सबसे बड़ा धनपति है और सबसे धनवीर, सबसे धर्मवीर है, सबसे बड़ा दानी है, इसने तो बहुत पुण्य के काम किए हैं और यहां तक ये चर्च भी इसी ने बनाया है, फिर ये ऐसी बातें कैसे कर रहा है। पहले तो उसे लगा जाकर घोषणा कर दूं गांव में कि ये बहुत ही पापी व्यक्ति है, पर बाद में उसे लगा इससे अभी बात तो करूं, और वो वहीं खड़ा रहा। उस व्यक्ति की प्रार्थना पूरी हुई और उसने बहुत कुछ कहा, रिपेंटेंस, कन्फेशन, कॉन्ट्रिशन, और जैसे ही पीछे टर्न होके देखा तो देखा कि ये खड़ा है आदमी, और उसने कहा महाशय तुमने कुछ सुना तो नहीं। उसने कहा, लियो टॉल्स्टॉय ने, हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया। उस व्यक्ति ने कहा खबरदार अगर ये बातें किसी को कही तो, अगर ये बातें कहीं बाहर गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, केस कर दूंगा मानहानि का, ये जो कुछ था मेरे और उसके बीच में था, अब मैं जो बाहर हूं वो मैं दूसरा आदमी हूं, देख लेना अगर तुमने कुछ भी कहा तो। अंदर एक बाहर दूसरा, टाइटल खरीद सकते हो अच्छे सेवाधारी का, छुपके से मधुबन में आ सकते हो, नामी ग्रामी सेवाधारी बन सकते हो, परंतु बाप को नहीं चला सकते। यह सेवा केंद्र निमित्त आत्माओं के रहने का स्थान नहीं है, केवल निमित्त आत्माओं का स्थान नहीं है, बहुत पावरफुल महावाक्य है मुरली के, यह सेवा केंद्र केवल निमित्त आत्माओं के रहने का स्थान नहीं है। इसके लिए सेवा केंद्र को साधारण नहीं समझना, और मधुबन को तो बिल्कुल ही नहीं, जहां बैठे हो ये धर्मराज का दरबार है, सामने धर्मराज बैठा है, उधर इधर नहीं। चलन, पांच हो गए। अगला, समय पूरा हो रहा है, अगला है बुद्धि और संस्कार, उसके आगे संस्कार, इन दोनों की चेकिंग करनी है। फाइव हो गए, फाइव प्लस टू, बुद्धि और संस्कार। बुद्धि ने कैसे निर्णय दिए, क्या निर्णय किया, बुद्धि स्वच्छ थी, बुद्धि में क्या धारण किया, किसी के अवगुण तो नहीं धारण कर लिए। बुद्धि, संस्कार, वही पुरानी चाल और साधारण चाल और साधारण चलन और पुराने पुरानी चाल, आज के मुरली में कहा ये नुकसान करेगा। रात्रि को चेक करना है, संस्कार कोई इमर्ज तो नहीं हुआ, जो सोचा था खो गया, समाप्त हो गया, क्या वही वासना उसी फिनिक्स पक्षी की तरह अपनी राख से उठ तो नहीं गई। चेकिंग। अगला, फाइव प्लस टू, प्लस टू, शरीर और धन, तन और धन की चेकिंग। शरीर से कोई विकर्म तो नहीं हुआ, कोई उत्तेजना तो नहीं जागी, क्या देह भी शिथिल रहा, क्या देह भी स्थिर रहा। धन, क्या धन में वैसा ही अभी भी मोह है जो पहले था, क्या उसके लिए ही अभी वैसी ही भागदौड़ है जो पहले थी, क्या वही पागलपन, वही विक्षिप्तता अब भी तो नहीं। फाइव प्लस टू प्लस टू प्लस फोर, अब है फोर। फोर में दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण और आदतें। दृष्टि कैसी रही, हड्डी मांस से बना यह देह, यह अस्थि पंजर, क्या इसे, क्या आत्मा इसकी ओर आकर्षित हो रही, क्या यह देह खींच रहा है, क्या आत्मिक दृष्टि रही, क्या अवगुण को देखा या गुणों को देखा, सारी चेकिंग दृष्टि की। वृत्ति बहुत सूक्ष्म है, दृष्टिकोण, नजरिया, एटीट्यूड कैसा रहा, पॉजिटिव रहा कि विधायक रहा या नेगेटिव रहा। और आदतें, क्या ऐसी कोई आदत अब भी है कि जो तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, यदि है तो इसी भट्टी में उसे छोड़कर, स्वाहा कर, समाप्त कर जाना है, नई आदतों का निर्माण करना है भट्टी से, नव परिवर्तन, एक अभिनव पुरुष बनकर जाना है। महात्मा बुद्ध जब अपने घर आए 12 साल के बाद, उनके पिता ने कहा तुम मुझे छोड़कर चले गए, मैं इतना बूढ़ा था, क्या तुम्हें जरा भी मेरी परवाह नहीं थी, मैं चल नहीं सकता हूं, मुझे दिखाई कम देता है और तुम छोड़ के चले गए, क्या यही तुम्हारा पुत्र धर्म है, और अब आए हो, मेरा हृदय पिता का है, अब भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, अब भी आ जाओ, राज्य इंतजार कर रहा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं शायद आप गलती कर रहे हैं, जो यहां से गया था और जो आया है ये अलग अलग है। पिता कहते हैं क्या मुझे धोखा दे रहे हो, क्या मेरी आंखें देख नहीं सकती, क्या तुम्हारे रंग रूप को मैं नहीं जानता। महात्मा बुद्ध कहते हैं जो यहां से गया था वो मर चुका है, और जो आया है अब वो नहीं है, जो आया है वो जगाने आया है। भाषा का अंतर था, पिता की भाषा देह की थी, इनकी भाषा आत्मा की थी। प्लस फोर, भावना, कल्पना, स्मृति और चौथा स्वप्न, इन चारों में भी संपूर्ण पवित्रता, इन चारों में भी बाप समान, इन चारों में भी बाप को फॉलो करना, इन चारों की धारणाएं, इन चारों का धर्म। भावनाएं कैसी है, दूषित तो नहीं, विकारी तो नहीं, कुभावना तो नहीं। स्वप्न कैसे, संकल्प कैसे, स्वप्न और भावनाएं कैसी है, स्मृतियां कैसी है, पहला भावना, दूसरा स्मृति, तीसरा कल्पना और चौथा स्वप्न। इमेजिनेशन कैसी है, सेंशुअल फैंटेसीज में जीवन तो नहीं गुजर रहा है। सभी कुमार वासनात्मक कल्पनाएं, उत्तेजनात्मक कल्पनाएं, सेंशुअल एंड सेक्सुअल फैंटेसीज, कहां चित्त भटक रहा है, स्वप्न जगत, दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग, प्लस फोर, सुनना, क्या सुना, व्यर्थ तो नहीं सुना, विकार की बातें तो नहीं सुनी, परचिंतन तो नहीं सुना। अगला, खाना, किस मनोदशा में स्वीकार कर रहे भोजन को, धर्म की परे शुद्ध अन्न स्वीकार किया, अपनी लोकलाज को छोड़ तो नहीं दी। सुबह चक्रधारी बहन जी ने बहुत सुंदर बात सुनाई थी, सभी ने सुनी है, शुद्ध अन्न। वो मिलिट्री वालों को लाज आती है वो ड्रेस पहनने से, कभी यदि कोई सिख धर्म का है तो उनको शर्म आती है पगड़ी पलने पहनने से, हमको डर लगता है। एक भाई ने अनुभव सुनाया था, 10 साल ज्ञान में चला परंतु बैच नहीं लगाए, डर लगता था ऑफिस में, छोटा सा कभी यहां लगा लेता था वो गोल वाला बटन के नीचे, ताकि किसी को दिखे भी ना और ये संतुष्टि भी हो कि मैंने लगाया है, पर डर था। 10 साल के बाद हिम्मत आई बैच लगाने की, वो लोग परवाह नहीं करते लोक लाज की। उस मीरा ने कोई परवाह नहीं की जिस राजस्थान में कभी घूंघट नहीं उठा सदियों से, सड़कों पर चली आई, लोक लाज सब त्यागी रे, त्यजी लोक लाज। क्या ऐसा प्रेम है उससे, क्या खा रहे हैं, किस भाव में खा रहे, अहोभाव है, धन्यवाद का भाव है, प्रसन्न चित्त है। यदि क्रोध में खा रहे तो वो भोजन भी नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि हिंसा का भाव है, हिंसात्मक भावनाओं को जन्म दे रहा है शरीर में। किस पैसे का आ रहा है, किस मनोदशा दशा में बनाया जा रहा है, किस मनोदशा में खाया जा रहा है, सारी बातें है उसमें खाना। उसके बाद है स्पर्श करना, टचिंग, हियरिंग, ईटिंग, टचिंग। हमारा स्पर्श जो हो उसमें पवित्रता हो, विकार की गंध ना हो, स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भाव ना हो, और अंतिम 21वां, लिखना, राइटिंग। राइटिंग में कहीं अपवित्रता तो नहीं, मैसेजेस में, व्हाट्सएप में, ईमेल में, पवित्रता की ऊंची परिभाषा है, बहुत बड़ी। तो 21 चीजों की धारणा करनी है, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चलन, 5 प्लस 2 बुद्धि, संस्कार, प्लस 2 धन और शरीर, प्लस 4 दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण और आदतें, प्लस 4 भावना, कल्पना, स्मृति और स्वप्न, प्लस 4 स्वप्न की बात हमने नहीं की है, ये सब ठीक हो जाएगा तो स्वप्न अपने आप ठीक होंगे। अंतिम और प्लस 4 सुनना, खाना, स्पर्श और लिखना, टचिंग, ये सभी चीजें पवित्र हो जाए। धर्म और कर्म, ऊंच कुल का धर्म और कर्म भी ऊंच हो। कर्म धर्म अर्थात याद, धर्म अर्थात याद, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में देह का त्याग करना पड़ जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, जिसको वचन दिया है छूटे ना, वचन न जाए। ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपक आत्माओं को, ऐसे सदा के सर्वश्रेष्ठ फल को प्राप्त करने वाली आत्माओं को ऐसे सच्ची लगन से स्नेही और सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसे सदा बाप से बाप के स्नेह में हद की अल्पकाल की सर्व प्राप्तियों को कुर्बान करने वाली स्नेही आत्माएं सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड नाइट याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।